cocaína.
Sos hueca, ¿no?
Oye, ¿cuánto caía, no?
¿Cuánto está, chavo?
¿Cuánto caía, no? ¿Cuánto te acó?
Assalamualaikum सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए. मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज. गुलरुख हमारी प्रोड्यूसर है और हमारे इंजीनियर हैं कर्टिस बायनम. तो आज हमारा प्रोग्राम, अगर आप में से जो लोग फेसबुक पर जाते हैं आपने देखा होगा, बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है क्योंकि आमतौर से एक या दो मेहमान होते हैं. आज हमारे प्रोग्राम में कई मेहमान हैं क्योंकि ये एक ग्रुप है नौजवानों का जो फिल्म बनाते हैं और लम्स जो इदारा है उसमें इनका जो सोसाइटी कायम है वो सोसाइटी क्या है उसकी तफसील भी हम इनसे सुनेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाए हैं, मुख्तलिफ फिल्में बनाई हैं. लेकिन इससे पहले कि हम इनसे बात करें, लीजिए एक झलक इनकी बनाई हुई एक फिल्म के सुनते हैं.
मेबल का तारुफ मैं कैसे कराऊँ, जहीन थी, होशियार थी, खुश मिजाज और हर दिल अजीज थी, लेकिन उसके लिए ये बेहद अहम था कि उसकी खूबियों का इल्म सबको हो. एक अजियत मुसलसल मेरे जहन पर मंडलाती रहती थी कि मेबल का मुतालिया मुझसे बहुत वसी
है.
ये खांसी का शरबत है.
कितनी किताबें? एक, दो, तीन,
दस.
दस, दस किताबें हो जाए, मसला ही कोई.
वो मेबल किताबें पढ़ सकती है तो क्या कहना चाहते, मैं नहीं पढ़ सकता.
तो सामीन, मेबल और मैं, यह है इस फिल्म का नाम. आप में से बेशतर ने पतरस बुखारी की यह कहानी पढ़ी होगी. कई नस्लों से ये कहानी पढ़ी जा रही है लेकिन शायद ही हम में से किसी को ये ख्याल आया होगा कि ये छोटी सी कहानी जो अपनी जगह एक बड़ी ही एक उस ज़माने में जब ये लिखी गई उसके लिहाज से एक आज़ाद जहन की पैदावार भी है ये कहानी. तो ज़ाहिर बुखारी साहब ऐसे ही आदमी थे. हम में से बहुत सों को ये ख्याल नहीं आया होगा कि इस पर कोई फिल्म बन सकती है लेकिन लम्स मीडिया आर्ट सोसाइटी के इस ग्रुप ने ये फिल्म बनाई है. वैसे तो ये सोसाइटी खासी बड़ी है, हम तफसील अभी सुनेंगे, लेकिन हमने जिन लोगों को मदु किया है वो लोग हैं जो इस फिल्म के बनाने में शामिल थे. हमारी ख्वाहिश है कि हमारे सुनने वाले जो हैं ज़रा गौर से ये प्रोग्राम सुने और कुछ लिंक्स के बारे में भी जाने जिन पर वो इन लोगों के बारे में और भी मालूमात हासिल कर सकते हैं और फिर वो इस फिल्म को देखें क्योंकि पाकिस्तान में फिल्मों की नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे लोग अच्छी फिल्में देखना छोड़ चुके थे. तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईमान रिजवान, शम्स पाशा, उसामा लाली और अरूबा सत्तार. अस्सलाम वालेकुम आप सबको. तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको आवाज़ आ रही होगी, खास तौर पर अरूबा को क्योंकि अरूबा वाहिद लड़की है आपके इस ग्रुप में इस वक्त. अरूबा आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई, आपको आ रही है आवाज़ मेरी या नहीं? जी आपकी थोड़ा सा लाइन खराब है, हम आपको दोबारा आप फोन अगर बंद कर दें तो. समीन, अरूबा से आपकी अभी बात होगी लेकिन शुरू करते हैं ईमान से क्योंकि ईमान डायरेक्टर हैं इसके, शम्स को डायरेक्टर और उसामा जो है वो लीड एक्टर हैं. इसके अलावा खदीजा अहमद को हम किसी वक्त इस प्रोग्राम में लेंगे जिनका वो भी लीड एक्ट्रेस हैं. तो ईमान थोड़ा सा बताइए हमें पहले तो अपनी सोसाइटी के बारे में. अच्छा शम्स आपको आवाज आ रही है मेरी?
मेरा नाम आयमन है.
अच्छा आयमन, पहले आप अपने नाम के बारे में मुझे बताइए.
मतलब होता है राइट, मतलब सीधा.
चलिए हाँ आयमन आप बता रहे थे अपने सोसाइटी के बारे में हमें.
तो वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है और इसमें बाहर से बहुत ज्यादा हमें सबमिशंस मिलती हैं और पाकिस्तान से भी सबमिशन मिलती हैं. तो शुरू में मेरा शौक तो मेरा था कि मैं फिल्में बनाऊं लेकिन तब तक उस साल तक इतनी ज्यादा फिल्में बन नहीं थी सोसाइटी में. तो मैंने उस वक्त सोसाइटी फिर नफरत चीजें सीखी हमारे डायरेक्टर साहब होते थे विराज भाई, उन्हें हम कहते थे प्यार से, तो उनके साथ हमने काम किया और फिर मुझे लगा कि मतलब इस सोसाइटी में मतलब जो लोग हैं उन्हें उनसे सीखने को मुझे काफी ज्यादा मिला। तो फिर इस साल के एंड पे जो पिछला साल जो था हमने ये फिल्म बनाना शुरू की, सारी गर्मी की छुट्टियां थी उस पर हमने स्क्रिप्ट लिखी इसकी।
अच्छा, हमने स्क्रिप्ट लिखी वो मैं समझ गई, क्योंकि आपके मैं पूरी तफसील देख रही थी तो कई लोगों के नाम थे। चलिए हम आपके दूसरे जो आपके को डायरेक्टर हैं शम्स पाशा, उनको लेते हैं। शम्स, आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या मतलब किस तरह आप अपने और आयमन के जो रोल है उसको डिफाइन करेंगे, यानी आप में से डायरेक्टर का काम क्या था और को डायरेक्टर का काम क्या था?
जी, हम दोनों जो थे हम दोनों जो थे डायरेक्टरशिप के पोजीशन में थे और हम दोनों ने इतना डिवाइड किया हुआ था कि वो जो है स्ट्रेटेजिक और लोगों को मैनेज करने का बताते थे कि इसमें हमने यही चीजें पॉइंट देखे हैं, और मैं जो होता था उसको एक्सक्यूज करता था कि लोगों को मैनेज करना, एक्सेस को एक साथ लाना, स्क्रिप्ट वगैरह से लोगों को गैदर करना। सो इस तरह हम दोनों ने जो थी जिम्मेदारियां जो है आपस में बांध के जो है ये फिल्म का जो है कम्प्लीट करवाई है पूरी।
अच्छा, आपका मैं पढ़ रही थी कुछ तारुफ आपने खुद ही जो लिखा था, तो उसमें ये था कि आपकी खानदान में जो है ज्यादातर लोग फौज में हैं और आप शतवाहिद शख्स हैं जिसने आर्ट का रास्ता चुना, तो मुखालफत हुई खानदान की जानिब से? माँ बाप का कुछ ख्वाब था लड़का डॉक्टर इंजीनियर या फौजी बन जाए?
ये जो इस तरह की जितने भी वालदैन की तरफ से और दूसरे रिश्तेदार बाबों की तरफ से एक मेंटल प्रेशर होता है कि हमारा बेटी इस तरह के फील्ड को चुने जो कि ज्यादातर की जाती है, ज्यादातर उसके ऊपर चल चुके हैं, तो ये तो हमेशा से एक रहता है। फिलहाल खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री और यंग सिनेमा के जो तालबे हैं उनके लिए हमेशा प्रेशर रहता है, लेकिन जब आप थोड़ा बहुत आगे काम करते रहते हैं तो हमको दिखाते हैं कि जो हम लोग काम करें वो सोच समझ के कर रहे हैं, इसकी लोगों को समझ आते हैं और इसको जो है लोग पसंद करते हैं, तो वो खुद ब खुद जो है पेरेंट्स के अंदर जो वालदैन के अंदर एक कॉन्फिडेंस है और थोड़ी सी उनको एक बात समझ आना शुरू हो जाती है कि जो बच्चे मिल के कर रहे हैं ये कुछ ना कुछ जो है काफी एक अच्छी चीज कर, तो उससे जो है उनको कॉन्फिडेंस आता है और इस तरह आप उनको समझा सकते हैं कि ये एक जो चीज है यंग बच्चों के लिए ये काफी जो है आगे उनके लिए अच्छा काम है।
बिल्कुल, हमारी तो बड़ी तवक्कुआत है क्योंकि जिस जो सूरत हाल है इस वक्त इंडस्ट्री की, तो उसमें तो हमें यही उम्मीद है कि आप जो छोटे नौजवान आ रहे हैं हमारे, बात करते हैं उसामा से जो कि लीड एक्टर हैं। उसामा, कुछ थोड़ा सा बताइए, बहुत दिलचस्प किरदार है आपका जो है इस कहानी में, तो कुछ उसके बारे में बताइए सुनने वालों को।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मेरा जो किरदार था इस कहानी में, वो जब देखा जाए तो पतरस बुखारी ने जब मजमून तहरीर किया था तो वो आप भी पी लग रही थी आपको कि पतरस बुखारी ने फर्स्ट पर्सन में उसको लिखा है। मेरे साथ ये हुआ, मेरी एक दोस्त थी जिनका नाम मेबल था, तो जब मैंने ये अफसाना ये जो मजमून था बचपन में पढ़ा भी था, हम सब बचपन में हमारी बल्कि उर्दू की टेक्स्ट बुक्स में पंजाब टेक्स्ट बुक्स में आपको पतरस बुखारी पढ़ने को मिलते हैं, तो पतरस के मजामीन के नाम से छोटी किताबें भी छापी जाती हैं, तो जब मैंने अपने जमाने में पढ़ा था तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, बड़ा मजाया एक उनके तंज व मजा था, तो लेकिन जब मैंने इसको देखा कि इसको एक्टिंग में किस तरह ढाला जा सकता है इस सब्जेक्ट मैटर को, तो मैं यही सोच यही थी कि एक तो नरेशन करनी पड़ेगी काफी ज्यादा, क्योंकि हम एक अदबी चीज को हम उसको अदबी तर्क से उसको हम पेश करना चाह रहे हैं, इवन सिनेमा में अगर या फिल्म पे अगर उसको ढाला जाए तो उसमें वो पहलू रहना चाहिए जो लिटरेरी पहलू है उसका, वो नहीं लूज होना चाहिए। तो एक तो फिल्म में नरेशन काफी ज्यादा थी जिसमें मैं वॉइस ओवर के थ्रू पीछे से मेरी आवाज आती है सीन की, वो बताती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और उर्दू जो है वो काफी मुश्किल रखी है हमने और वो इंटेंशनली रखी है। डायलॉग जो थे वो भी मुश्किल उर्दू में है, और जो एक चैलेंज था हमारे लिए वो ये था कि इस मुश्किल उर्दू को नेचुरल कैसे साउंड करवाएं, क्योंकि आमतौर पे यूनिवर्सिटी के तलबात इस तरह आपस में गुफ्तगू जो है जब हम कलाम होते हैं तो वो मुश्किल उर्दू इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसमें क्योंकि हमने वो ओरिजिनल टेक्स्ट की जो अदब की जो वैल्यू है वो भी हमने बरकरार रखनी थी, तो हमने एक तो चैलेंज था कि उसको थोड़ा नेचुरल भी साउंड कराना है लेकिन मुश्किल अल्फाज भी हों, और उसके अलावा जो एक्टिंग में था वो ये था कि मुझे इस एक्टिंग इस किरदार का मुझे वैसे कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया कि देखें जी हमारी सोसाइटी में जेंडर को रोल दे दिए गए हैं कि ये खातून हैं इनका ये काम है, ये मर्द हैं इनका ये काम है, जो हमारी फिल्म है ये उस चीज को चैलेंज करती है, ये उस चीज उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती है, तो इसलिए भी मुझे काफी अपील किया, मैंने जाकर ऑडिशन दिया और फिर हमारे डायरेक्टर और राइटर्स को मेरा काम पसंद है और फिर हमारी दोस्ती ऐसे चल रही है कि हम एक और फिल्म पे भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके बारे में भी अगले साल इस वक्त आपसे बात हो रही है।
अच्छा,
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी तक ये किताब पढ़ाई जाती है, क्योंकि आमतौर से अब तमाम चीज़ों को निकाल दिया गया है जो कि दिलचस्प और अच्छी हुआ करती थी, और बड़ी सबक आमोज चीज़ें डाल दी गई हैं। तो ये हम जब छोटे थे, जो कि ज़ाहिर है हमारी और आपकी जनरेशन में बहुत फ़र्क है, हमने भी ये अपने स्कूल के ज़माने में उर्दू की जो पढ़ाई जाती थी उसमें ये कहानी शामिल थी, और तब से ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसका आखिरी जुमला जो है, जो बुखारी साहब ने लिखा था, ये लिखा था कि इसको इसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा सा जुमला था उनका। तो क्या आपका नाम क्या था इस फिल्म में, क्या नाम है, क्योंकि उसमें तो मैं था।
हाँ जी, फिल्म में क्योंकि हम ये इस चीज को हम एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे थे पतरस बुखारी की अपनी पर्सनल जाती जिंदगी में, और जो उन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर बनाया एक फर्जी के बाद, तो हमने जो नाम रखा वो हमने शर्जील नाम का इंतखाब किया अपने इस किरदार के लिए। अच्छा। हमने ये नहीं दिखाया कि पतरस साहब खुद हैं, इसके लिए हमें वो भी करना पड़ता, हमें पीरियड ड्रामा बनाना पड़ता, हमें जो उसका टाइम फ्रेम है।
ये मैं इतराज नहीं करी, मैं जानना चाहती थी क्योंकि उसमें मैं था और मेबल थी। हाँ, तो अब शर्जील आपने बताया कि आप थे। अच्छा, अरूबा हमारे साथ आ गई हैं। तो अरूबा, इसमें ज़ाहिर है कि जो बुखारी साहब की तहरीर में एक शगुफ्तगी और एक मिजाह तो है, और ये कहानी भी एक हद तक मतलब उसमें ह्यूमर मौजूद है, तो उसको कायम रखा आपने वो कहानी जिस तरह फिर आपने फिल्म जब बनाई, डायलॉग किसने, आपने खुद लिखे या किसी और ने लिखे है वो?
मैंने भी लिखे, मेरे साथ खान शाहिद और नेहा नूर ने बहुत मदद की है, हम तीनों ने मिलकर काफी मदद की।
अच्छा, चलिए हम इसे पहले कि आप लोगों से और बातें करें, एक झलक सुनते हैं।
मैं अक्सर ख्वाब देखती हूँ, एक ख्वाब देखती हूँ कि मैं ट्रेन में बैठी और ट्रेन चल रही है, आवाज आ रही है चुक 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 चुक, और घंटे गुजर जाते, दिन गुजर जाते, महीने गुजर जाते, मैं ट्रेन में बैठी, ट्रेन चलती जा रही, मेरा घर ही नहीं आ रहा, चुक 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 चुक।
तो शम्स, ये भी आप ही की सोसाइटी की बनाई फिल्म है, तो इसमें आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ इसी में है, मेबल और मैं में, या आपका पूरा ग्रुप शामिल रहता है मुख्तलिफ जो आपकी क्रिएशंस हैं उसमें? शम्स
जी, हमारी जो सोसाइटी काम करते हैं, ये पहले कुछ साल पहले यहाँ से 8 या 9 साल पहले इसको एक बहुत ही नोन जो है जो मशहूर डायरेक्टर है बिलाल अशारी ने इनको जो बनाया था सोसाइटी को, लम्स मीडिया सोसाइटी। लेकिन تعبیر میں لمس کے اندر جو آتے ہیں سوسائٹی کے پارٹ بنتے ہیں, ہم مختلف پروجیکٹس کے اندر جو ہے شامل رہتے ہیں. تو صرف نیبل اور میں ہی نہیں, اس کے علاوہ ڈاکیومینٹریز ہیں ہماری, میوزک ویڈیوز ہیں اور چھوٹی فلمس ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ اور بھی پروجیکٹس, ویڈیوز وغیرہ ایونٹس کے اندر شامل رہتے ہیں. تو صرف نیبل اور میں ان کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ کافی ایک مختلف تھا, جس کے اندر ہم جو ہے اردو ادب کو جو ہے ہمیں فروغ دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری طرف پہلی دفعہ جو ہے ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے اردو ادب کو ملا ہے, جس کو لوگوں نے بہت سراہا ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ یہ اس طرح کی فلمیں وغیرہ جو ہیں ہم لوگ بناتے رہے ہیں.
آئمن سے میں یہ پوچھوں گی, آئمن, کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے جو رائٹر ہیں آپ کی, ان کا تعلق بھی غالباً قانون کے شعبے سے, لا ڈپارٹمنٹ کی ہیں, اور آپ کے جو لیڈ ایکٹر ہیں وہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ محض اپنی سوسائٹی سے نہیں کرتے, لمس کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہیں آپ؟
میرا خیال سے جب ہم سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ لوگ شروع میں شاید اپلائی نہیں کرتے سوسائٹی میں, وہ مختلف لوگوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ڈفرینٹ. تو وہ اروبا اور لا کی ہے لیکن اسے لکھنے کا بہت شوق ہے, اسے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. تو کرنٹلی سوسائٹی میں ایسے لوگ لکھے جو لکھنے بہت زیادہ لکھ سکتے تھے, تو ہم نے پوری یونیورسٹی کے لیے اپلیکیشن کھولی جس کو لکھنے کا شوق, ہم سے کانٹیکٹ کرتے تھے, ہم اسے بات کرتے ہیں.
لیکن کیا پھر وہ اتنا وقت دے پاتے ہیں لا اسکول؟ مثلا لا اسکول کا ظاہر ہے, میرا خیال ہے کہ جو ان کا اسکیڈول ہے مختلف ہوگا آپ لوگوں سے. آپ کی سوسائٹی فلم میکنگ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے یہاں, یا آپ نے ایک سوسائٹی بنا رکھی ہے؟
ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آتی ہے.
میں شمس سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ شمس, کیا خود ظاہر فلم میکنگ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں اور اداروں میں پڑھایا جاتا ہے, تو آپ کے یہاں اپنے یہاں کوئی فلم میکنگ کا کورس یا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے لمس میں؟ اب ہمارے پاس بڑی خاموشی تاری ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسامہ آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟
جی ہم سن پا رہے ہیں.
اچھا, تو اسامہ اس سوال کا جواب آپ مجھے اگر دے دیں جو میں نے ان سے شمس سے پوچھا.
سوال جو آپ کا ہے وہ فلم میکنگ کے ریلیٹڈ آپ نے پوچھا کہ کوئی کورس ہو یا کوئی اس ہنر کو سیکھنے کا کوئی ذریعہ ہو لمس میں. لمز میں ایک فلم اسٹڈیز کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے کورس ابھی پچھلے سیمسٹر, اور یہ پہلا سیمسٹر ہی تھا جس میں یہ کورس آیا, 6 مہینے پڑھایا گیا. میں نے خود بھی یہ کورس لیا تھا, روبا ستار بھی تھی میری کلاس میں, ایمن بھی تھے. فلم اسٹڈیز تھا چونکہ اس لیے فلم میکنگ اس میں نہیں سکھائی جا رہی تھی کہ ایڈٹ کیسے کرتے ہیں, کیمرہ کیسے استعمال کرتے ہیں, شارٹس کیسے لیتے ہیں. تو وہ فلم میکنگ کا پروسیس ہے. فلم اسٹڈیز کا جہاں تک تعلق ہے تو فلم تھیوری بس پڑھائی گئی تھی اس کورس میں, کہ فلم جو ہیں وہ آج تک جو بنتی آئی ہیں اس میں کون کون سے پیریڈ تھے, کس پیریڈ میں کس طرح کی فلم بنی, اس طرح کی باتیں. تو جہاں تک فلم میکنگ کا تعلق ہے تو یہ جو کاوش ہے یہ انڈی فلم جو کہلاتی ہے, یہ امیر یا کوئی بھی اس طرح کی جو فلم ہوتی ہے وہ اسی لیے کہلاتی ہے کہ یہ جو ینگ جو ہیں جنریشن, یہ خود اپنے کیمرے لے کے اور شوٹ کر رہی ہے, ریکارڈ کر رہی ہے اور پھر ان کو ایڈٹ کر رہی ہے اپنے وقت میں, خود یوٹیوب جیسی سہولیات سے اسکل سیکھ کے کہ ایڈٹ کیسے کرتے ہیں, خود آن لائن دیکھ لیا کہ کس طریقے سے فلم کو ایڈٹ کیا جاتا ہے, ساؤنڈ کو کیسے مکس کیا جاتا ہے اور شارٹس کون کون سی کس کس طرح کی اسٹوری کو بتانے کے لیے بہتر ہوتی ہیں. جہاں تک ایل ایم اے کا تعلق ہے, ایل ایم اے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ انڈیپینڈنٹ کوشش کرتے ہو. اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی کیمرا ہے, کیمرا اکوپمنٹ, ڈالیز وغیرہ اور اس طرح کی جو بھی ٹرائی پوڈز اور اس طرح کی جتنی بھی آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک فلم بنانے کے لیے, جو بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں اور جو ہمارے جیسے طالب علم مطلب افورڈ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ تو وہ جو بجٹ ہے وہ ایلوکیٹ ہمیں ایل ایم اے کرتا ہے. اور پھر ہمیں لوگ بھی اس طرح کی سوسائٹیز کے تھرو ہی ملتے ہیں جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ہمارے جیسی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں, اور پھر ہم مل جل کے فلم بناتے ہیں, پہلے لکھتے ہیں پھر اس کو اسٹوری بورڈ کرتے ہیں, آڈیشن ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد فلمنگ شروع ہوتی ہے اور اس طریقے سے ایک فلم جو ہے.
تو اس میں آئمن سے میں پوچھنا چاہوں گی یہ سوال, آئمن یہ جو فلم تھی میبل اور میں, اس پہ کتنا بجٹ آپ کا تھا اس فلم کے لیے, اور کتنے مطلب کتنا دیا گیا اور کتنا خرچ آیا پھر؟
ایکچولی یہ جو ہم نے میبل اور میں بنائی ہے, یہ پہلی فلم ہم نے بنائی ہے جس پہ ہمارا زیرو بجٹ تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم فلم بنانے لگتے ہیں, پچھلے سال ہم نے جو فلم شوٹ کی تھی وہ ہم نے اندرون لاہور کے اندر شوٹ کی تھی, اس سے پہلے جو ہم نے فلم شوٹ کی تھی وہ ہم نے سائیوال میں ایک گاؤں میں جا کے شوٹ کی تھی. تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کافی کم ہوتا ہے, سردی کی چھٹیوں میں ہم یہ ساری فلم شوٹ کرنی ہوتی ہے 10 دنوں میں, तो उसमें आने जाने में, जगह पे परमिशन एक्वायर करने में, जगहों में टाइम बहुत मुश्किल बहुत आती हैं।
अच्छा।
तो इस दफा हमने सोचा कि सारी फिल्म जो है हम अपने यूनिवर्सिटी में शूट कर लें, ताकि हम ये ना हो कि हमारे पास टाइम की कमी आए या हमें ऐसी कोई दुश्वारी पेश आई कि हमें परमिशन नहीं मिल रही। तो हमने इसीलिए हमने पूरी फिल्म जो है अपनी यूनिवर्सिटी में शूट किया। हमारे बजट की एज सच रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। हमारे पास जो कैमराज वगैरह हमने दोस्तों से बोरो किए, ट्राईपॉड वगैरह LMA वगैरह के पास, LMA के पास खुद होता है, और बाकी छोटी मोटी हमें कभी प्रॉप्स चाहिए होते थे तो हम अपने खुद ही पैसे डाल के खरीद लेते थे।
बड़ी काबिल तकलीद बात है, और बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए जो कि समझते हैं कि सिर्फ फिल्में बड़े बजट से अच्छी फिल्में बनाई जा सकती हैं। बल्कि मैं ये सवाल पूछूंगी अरूबा से, अरूबा आप मुझे बताइए, अरूबा सत्तार, कि क्या अच्छी फिल्म बनाने के लिए बड़ा बजट भी ज़रूरी है?
बिल्कुल भी नहीं। आई वुड से कि अगर आपने बहुत ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स देखी हो, जिसमें फर्स्ट के लिए इवन जो ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म्स होती हैं उनके अंदर भी आपको इतने बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। मैंने ऐसी फिल्म्स देखी हैं जो कि एक सिंपल आईफोन से बनी हुई हैं और वो इतनी खूबसूरती से एक टेल को बताती हैं जिनके अंदर कोई डायलॉग भी नहीं होता। तो ये सारा कुछ मेरे ख्याल में कहानी के ऊपर डिपेंड करता है, किरदारों के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपका एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए। एग्जीक्यूट करने के लिए बजट की हाँ जरूरत होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है। तो हमने भी अभी ये सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे किया था कि हम कोशिश करें कि एक ऐसी कहानी लेके आए जिनके साथ लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। तो बजट जो है वो इतनी बड़ी कंसिडरेशन नहीं थी।
और मतलब मुझे नहीं पता कि ट्रेलर पे कितनी मेहनत की गई और असल फिल्म कैसी है। ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है आपका, मतलब मैं दिल से उस फिल्म को देखना चाहती हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छी फिल्म होगी, लेकिन लगता है ज्यादा बजट आपने उस पे ना लगा दिया खाली ट्रेलर पे।
जितने फिल्म के सीन हमें अच्छे लगे, फिर हम लोग ने पाकिस्तानी गाने जो है उनके ऊपर हमने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। हम चाहते थे कि पाकिस्तानी अंडरग्राउंड सॉन्ग्स हैं जिनको इतनी ज्यादा मशहूर उनको नहीं किया जाता, हम चाहते थे कि हम उनको किस तरह इंक्लूड करें। ट्रेलर के अंदर ने इस चीज के ऊपर भी एम्फसाइज किया। तो बाकी मेरे ख्याल में आपको एमन ट्रेलर के बारे में बता सकता है, क्योंकि इन लोगों ने भी काफी मेहनत की है उसके ऊपर।
आपने जहाँ इल्जाम लगाया गया फौरन उनका नाम एमन का नाम ले दिया कि वो बताएंगे, आप जवाब नहीं देंगी। वैसे मैं अरूबा आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि बहुत अरसे तक पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर जो मेल एक गलबा था, तो आपका जो सोसाइटी है उसमें किस हद तक आपको लगता है कि मिल के काम करते हैं आप दोनों बराबरी के साथ तमाम लोग?
अच्छा, सिर्फ सोसाइटी की बात करें
जी, जी।
तो ये आपको इंटरेस्टिंगली बताऊंगी कि बिल्कुल मुझे तो कभी भी कोई मसला नहीं हुआ सोसाइटी के अंदर के, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि भाई मैं औरत हूँ उसकी वजह से जो है मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है या मुझे चांस नहीं मिल रहा बोलने के लिए। आइडियाज हमेशा सराहा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कोई मर्द है या औरत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज कि आप लेके क्या आ रहे हैं, आप क्या आइडियाज लेके आ रहे हैं, आप क्या नई चीज बना सकते हैं, तो अल्टीमेटली तो वही डिपेंड करता है। मुझे कभी इस तरह सोसाइटी के अंदर एज सच लगा नहीं। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जनरली, और ये बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है कि औरतों के साथ जो है उनकी ओपिनियंस को इतना ज्यादा वेटेज नहीं दी जाती जितनी मर्दों को दी जाती है। लेकिन फिलहाल अभी इस सिनेरियो के अंदर मुझे कुछ इस तरह का नजर नहीं आया।
अच्छा, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, बल्कि मैं क्या हमारी जो प्रोड्यूसर है गुलरुख, के वो खदीजा को मिला लें, खदीजा अहमद को, ताकि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ उसामा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है खदीजा का, मुझे मालूम नहीं क्या।
मैं उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ, दरअसल वो आजकल एक लॉ फर्म के अंदर भी काम कर रही हैं।
अच्छा,
तो और वो सब पार्ट टाइम जो है वो टीचर्स असिस्टेंट भी काम कर रही हैं, तो मतलब शी इज प्रीटी बिजी, लेकिन मैं भी उनको फोन कर देती हूँ।
तो आप सारे के सारे लॉ के स्टूडेंट्स क्यों फिल्मों में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं?
नहीं, सिर्फ मैं और खदीजा ही लॉ स्टूडेंट्स हैं अभी फिलहाल इस ग्रुप के अंदर।
ये जो है ये भी तो उसामा जो है ये भी तो लॉ के स्टूडेंट है।
उसामा लॉ के?
हाँ, देखिए आपको आपको जो राज नहीं पता वो मुझे मालूम है कि उसामा लॉ पढ़ रहे हैं।
नहीं, दरअसल ये फ्रेशमैन थे जब मैं इनसे मिली थी, तो इसलिए मुझे सब पता नहीं था, उस दिन का अनडिक्लेयर्ड होगा या कुछ।
अच्छा,
लेकिन आई थिंक कि
टेक्निकली शायद एक्सपीरियंस तो रूबा लगा हुआ कह रही है, क्योंकि उसे लॉ शुरू हो रहा है अभी, बीए मेरा चल रहा
है। अच्छा अच्छा, ठीक है,
उसकी माफ है।
तो सही है, खुशी हुई मुझे कि कानून के माहिर बनने के साथ। वैसे कहते हैं ना अदालतों में, खास तौर पे अगर आप ऐसे लॉयर हों जो कि अदालत में मौजूद हो और उसको बहस भी करनी हो, तो उसके लिए फिल्म में एक अच्छा ट्रेनिंग की जगह भी है। तो शम्स, कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए आप मुझे।
जी, हमारे एक जो अभी आने वाला प्रोजेक्ट है वो काफी दिलचस्प है, जो हमें पहली दफा उसको देखने को मिला वो था तलाश की जो वादियां हैं ये हमारे चित्राल के साइड पे, तो वो हमारे लिए काफी दिलचस्प था कि हम लोग पहली दफा लंप के स्टूडेंट इसी तरह मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स मुख्तलिफ क्या कहते हैं शोबों से जो कि पढ़ाई करने से लॉ में इंजीनियर सारे मिलके हम लोग गए थे कलाश की वैलियां रुम्बूर में बोम्बरेत और बरीर के जगह पे, तो वहां जाके हमने लोगों के जो कलाश के जिस तरह खूबसूरत उनके जो वादियां हैं उनके जो कस्बे हैं उनके जो जितने भी कस्टम्स हैं उनके जितने भी त्यौहार हैं उनके बारे में हमने जाना, उनके मजहब के बारे में जाना, और हमारा इस दफा क्या कहते हैं हमने काफी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिनके ऊपर जो है कलाश के ऊपर एक बताया जा रहा है कि वो कौन है, उनकी आबादियाँ क्यों कम हो रही हैं, उनको और क्या क्या मुश्किल का सामना है, पर इस दफा हमारा जो एक जो अहम जो हमारा जिसको फरोग देना है वो ये देना है कि वो एक आम पाकिस्तानी है, तो उनको आम पाकिस्तानियों की तरह एक हम समझें और हम लोग फरोख दें, तो उस तरह हम लोग एक यंग जो बच्चे हम लोग वहां गए उनसे बातें चीजें की उनके साथ मजे की बातें की, वो जो है हम एक डॉक्यूमेंट्री एक दूसरी तरह की डॉक्यूमेंट्री में लाना चाहेंगे।
अच्छा।
उसके साथ साथ अभी एक हम नई फिल्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं जो कि यंग बच्चों के ऊपर ही मबनी है और जिसके अंदर हम लोग लाहौर की मुख्तलिफ इलाकों को जो है एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे कि अक्सर ये होता है कि आजकल सिर्फ असर ही समझा जाता है कि यंग जनरेशन के लिए सिर्फ फरोग के लिए आप या तो कोई पार्क चले जाए या फिर आप खा लें, ज्यादातर लाहौर में होता है कि आप बस खाने पे ज्यादा आप कहते हैं कि खाया जाए,
तो
हम दिखाना चाहते खाने के अलावा भी काफी अच्छी जगह है लाहौर के अंदर जो कि फिल्म की सूरत में जो है हम लोग दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह साल के एंड पे वो कंप्लीट हो।
मैं बिल्कुल शम्स आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, कभी मैं यहाँ बच्चों को दिखाने के लिए कोशिश करती हूँ कि पाकिस्तान की कोई निकालूं यूट्यूब पर कोई चीज, खानों के ढेर लगे होते हैं हर तरफ, एक एक तरह के हजार हजार एक खाने के हजार हजार जो है क्लिप्स होते हैं और कोई ढंग की कल्चर की या कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, सड़कों पे लोग क्या कर रहे हैं। पहले मैं कॉलर को लूँगी, वाकेंट से अली शेर हमारे साथ हैं, उनका सवाल ले लें। जी अली शेर साहब, सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम भाजी, क्या हाल चाल है?
जी बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक हो? आज तो चार मेहमान हैं, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं।
भाजी आपके चार मेहमान हैं, हमारे साथ भी बहुत बैठे हैं भाजी।
अच्छा अच्छा जी,
अब बाजी बात ये है ना, मेहमानों को सलाम कहना।
हाँ।
और दूसरी बात ये है कि बाजी जो है ना गाना वाना भी सुनाया करो, ज्यादा जो है ना बातें जो है ना वो सही नहीं होती।
गाना वाना भी सुनाया करें, गाना वाना तो आप हर वक्त सुन सकते हैं, ये कहाँ मिलेंगे? आपने सुन लिया होगा अली शेर साहब ने कहा कि गाना वाना नहीं सुना रहे, तो आपकी फिल्म में गाने वाने नहीं होते क्या?
हाँ जी, हमारी फिल्मों में हमारी फिल्म में हमने गाने डाले हैं और वो गाने जो है वो इंडी जो म्यूजिक म्यूजिशियंस हैं पाकिस्तान के हैं, उनके हैं, इस्लामाबाद कराची लाहौर इनके जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं ना जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही हैं उनके हमने गाने डाले हैं और सब उर्दू में है।
बातों का मकसद नहीं मतलब अगर पता नहीं तो बस शोर है, झूठे लफ्ज और झूठे चेहरे बोलते रहेंगे के तू कम जोर है, क्या तुझे जाने तेरे अंदर गुम में काए रात है, याद नहीं क्या तुझको अब कुछ, एक रात में भूल गए कि वो तेरे साथ है,
खास ख्याल रखा है कि अगर हम एक इंडी फिल्म बना रहे हैं जिसमें हम एक इतने बड़े
इतने बड़े राइटर का काम हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम साथ साथ उसके अंदर जो म्यूजिक है वो भी यहाँ का ही डालें, ताकि क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ एक राइटर को प्रमोट करने का नाम नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की, इसको अगर फरोग देना है तो इसमें आप पाकिस्तान की हर अच्छी चीज को इंक्लूड करेंगे, ताकि हर किस्म का फ्लेवर डाला जा सके। और
तो तकल्लुफ से काम नहीं लीजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप में से किसी को गाना आता है क्या?
कोई हम
गा सकते हैं?
हाँ जी, हाँ जी।
तो प्लीज, हमारे सुनने वाले इतनी फरमाइश कर रहे हैं, आपने कोई गाना मुझे भेजा ही नहीं था जो मैं डाल देती, अब कुछ सुना दीजिए आप, फिर अपनी किसी फिल्म का ही गाना सुना दीजिए, जो भी सुना दीजिए।
क्यों, शेर साहब चले गए हैं तो चले, इसीलिए हमको गाना सुना देते हैं।
शेर साहब रेडियो पे सुन रहे हैं प्रोग्राम?
हाँ जी, मैं उम्मीद करूंगा सुन रहे हो जी। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें क्या ना करो, आज जाने की ना करो।
बहुत खूब, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि गाना किसने सुनाया, तो किसकी आवाज थी? उसामा की थी। जबरदस्त भाई उसामा, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी।
आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने, हमारे साथ साथ। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अच्छा जी, तो हमारे एक फेसबुक पे सवाल भेजा था गिलगित से एक साहब ने, और आप जाते हैं पुरफजा मकामात पर, मंजूर हुसैन ने, वो कहते हैं कि हम भी गिलगित बल्तिस्तान पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, क्या हम आपके साथ इस सिलसिले में कुछ काम कर सकते हैं? ये आपसे सवाल है, तो मेरे ख्याल है आयमन अगर जवाब दें इसका।
असल में मैं जो हूँ इस साल ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो ये जवाब ना आपको शाम से का, क्योंकि वो ही अभी आजकल सोसाइटी में काम कर रहा है, मैं अभी इस साल ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो मुझे इसका इतना ज्यादा डिटेल में पता नहीं है।
अच्छा,
उसको की बात को अगर मैं जवाब करूँ तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि पूरे पाकिस्तान से जो भी हमें सुन रहे हैं आजकल, जो भी जिस फील्ड के अंदर कोई यूनिक पाकिस्तान के बारे में, खासतौर पाकिस्तान की, अगर हम लोग किसी भी चीज को फरोग देना चाहें तो हमसे जरूर रास्ते में रहें, और हम लोग जरूर उसको जो है मिलके एक दिन या अभी से शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरे पाकिस्तान से लोगों के साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ी चीज बनाए, तो ये हमें खुशी होती है, हमें बहुत बहुत खुशी है मंजूर हसन साहब की इस बात से, कि अगर वो हमसे जरूर रास्ते मिले, हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है क्या कहते करना चाहते हैं।
तो आप इन्हें बता दीजिए अपनी फेसबुक का पता या आपका कोई वेबसाइट है, तो ताकि उस पर कॉन्टेक्ट कर लें आपसे।
जी जी, आप मंजूर हसन साहब और जितने भी हमें नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं, वो इस चीज को फेसबुक के ऊपर, जो कि सोशल मीडिया वेबसाइट है, उसके ऊपर आप हमें सर्च कर सकते हैं, लम्स मीडिया आर्ट सोसाइटी, उससे जो है आप क्या कहते हैं हमें रابطہ कर सकते हैं हमारे पेज को, या फिर इवन अगर आपको कोई भी लम्स का तालब इल्म आपके जान पहचान में है, आपके दोस्त है या रिश्तेदार में से है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि किसी भी को हमें लम्स मीडिया आर्ट सोसाइटी या किसी भी बंदे से हमारा ताल्लुक करवा दें, तो वो हम हमें जरूर हमें जो इनकी सोसाइटी के काउंसिल है उनसे और जितने भी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री पे काम करने वाले उनसे वो रास्ते में जरूर ले आएंगे।
अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा आपको यकीन है कि सब पूरा लम्स आप लोगों को जानता होगा बहुत अच्छी तरह। मगर मैं ये तारीफन कह रही हूँ, मैं इतराज नहीं कर रही। अच्छा अरूबा, एक और सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए कि इनका नाम है अब्दुल्ला बिन रहीम, और इन्होंने तो खत से तारीफ की है, लेकिन हलीम खान ने ये पूछा है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पर कितना वक्त लगता है।
एक डॉक्यूमेंट्री मेरे ख्याल में तो ये सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप लोग एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, आप कितना टाइम इसके लिए गुजार सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये जो अभी रिसेंटली लम्स मीडिया और सोसाइटी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उस पर जो है इन लोगों को जाना पड़ा था प्रॉपर, वहां पर लोगों से बात करनी पड़ी, फिर एडिटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो ये तो काफी लंबी प्रोसेस है, ये टोटली डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट कौन सा, और अगर ये बता सकते हैं कि किस चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे तो फिर हम इनको कोई एस्टिमेट दे सकते हैं। अभी शम्स इस वाले पे कितनी देर लगी थी?
हमें क्या कहते हैं, हम इस पे अरूबा की बातों में चला जाऊं कि इस पे जो हम लोग गए थे यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए हम लोग गए थे गिलगित करदूहुंजा, तो हम भी ऑलरेडी इस जो इस तरह की चीजें हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, पर उसके लिए हमारी रिसर्च जो थी उसके ऊपर जो काम पहले से करना था वो बहुत ज्यादा था। अच्छा। हम लोग जर्नल्स वगैरह 1.5 महीने में जर्नल्स पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ उसके बारे में लोगों से कॉन्टेक्ट करें, सो उससे पहले अगर आप रिसर्च करें उसके बारे में जाने तो इसमें आपको 1.5 से 2 महीना लग सकता है अगर आप सही तरह उसको जस्टिस देना चाह रहे हैं इस टॉपिक को।
अच्छा आप दोनों ने जो आपस में बात की मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं ये कहना भूल गई थी कि आप जहाँ भी चाहें आप एक दूसरे की बातचीत में शामिल हो सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से मेरे ख्याल है 2 अच्छे टेलीफोन हमारे पास हैं और दो लोगों का कब्जा है, वो एक दूसरे को कब्जा ग्रुप से छीन सकते हैं टेलीफोन जब भी चाहें किसी बात। तो अच्छा आगे चलते हैं, और शम्स पाशा बता दूं, ऐमान रिजवान, उसामा लाली और अरूबा सत्तार जो हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। खदीजा अहमद से अरूबा ने वादा किया है कि हमारा कॉन्टेक्ट कराएंगी, तो हुए कुछ कुछ आपका कोई मैसेज वगैरह किया आपने उनको क्या? हम उनको
अभी खदीजा से मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, उनका फोन बंद जा रहा है, तो मैंने उनको मैसेज भेज दिया, तो होपफुली इंशाल्लाह वो आ जाएंगी।
अच्छा अच्छा, गिलगित से मोहम्मद अयूब साहब हमारे पास साथ हैं। जी अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जनाब आपा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक?
बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
खैरियत से, बहुत ठीक ठाक खैरियत से, खुशी हुई आपसे बात करके। काफी कोशिश कर रहा था मैं आपका प्रोग्राम देखूं पर देख नहीं सका, मैं फेसबुक पे आपके प्रोग्राम का वो टाइटल पढ़ रहा था, तो मैं ये पूछना चाहूंगा अपने दोस्तों से कि गिलगित बल्तिस्तान का उन्होंने विजिट किया है, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान भी जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, पाकिस्तान के शुमाल में सयाहों की जन्नत भी इसको कहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरफ भी आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, हमारे इलाके को भी थोड़ा प्रमोट करे।
वैसे गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत तो बेहद है, मतलब जहर है कि वो तमाम इलाके खूबसूरत हैं, लेकिन कोई खास चीज अगर आप इन लोगों को ना बुलाने के लिए जरूरी है, कोई खास बात बताइए आप जिस पे आप चाहें कि उस पे जरूर बात की जाए।
खास बात यह है, अगर हम सामाजिक इश्यूज पे हम बात करें तो खुसूसन मेरे जिले में एक बहुत बड़ा इशू है कि सुसाइड का, यहाँ पे इसका रेशो बढ़ता जा रहा है, इसी महीने में अगस्त के महीने में जिले में 4 सुसाइड के केसेस सामने आ गए हैं। अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाऊं कि इस पे काम करने की जरूरत है, क्या हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए कुछ कर रही है, क्या समाजी लोग जो दावा करते हैं इंसानी हुकूक की बात करते हैं क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई काम किया है, तो जनाजापा मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज के ऊपर भी काम होता कि अगर एक इंसानी जान बच सकती है तो उसमें हम सबका जो है ना।
आप अयूब हमारे साथ रहिए, मैं चाहूंगी आप अभी जाए नहीं, आप में से कोई जवाब देना चाहेगा उन्होंने जो बात अभी कही जो भी आपने?
अयूब की जो बात है वो काफी एक काफी है कि मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए इन इलाकों में, और ऐसी खास तौर पे जो ऐसी टॉपिक और ऐसी बातें होती हैं वो छुप जाती हैं, जो आम जो सयाह वगैरह जो टूरिस्ट होते हैं वो ऐसी चीजें नहीं देख पाते और उनको नहीं समझ पाते, वो सिर्फ ब्यूटी और वहाँ की खूबसूरती के ऊपर बात करते हैं। तो हम जरूर क्या कहते हैं, ऐसी चीजें हम जरूर इनको हम लोग फोकस में लाना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कोई काम कर दिखाएं कि जो कि लोगों की आंखें खोल दें, क्योंकि इंटरनेशनल और दुनिया भर में ये होता है कि डॉक्यूमेंट्री थी एक बाहर ऐसे एक चीज है जो कि लोगों को उसके ऊपर उनका ध्यान लाती है, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन और इसके ऊपर लॉ वगैरह पास हो चुके इन्हीं इन्हीं मीडिया से रिलेटेड लोगों से जर्नलिज्म के अंदर। तो हम जरूर अयूब को कहेंगे कि हमसे अगर वो कांटेक्ट में रह सकते हैं, हमारे लम्स मीडिया आर्ट सोसाइटी फेसबुक पर हम कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि अपने लोगों से पता करवाएं कि ये किस इलाके और कहां कहां ये वाकया रहा और इसके में क्या क्या चीजें।
तो अयूब कौन से जिले से ताल्लुक है आपका गिलगित के?
मेरा जिला गिजर से ताल्लुक है आपा। इसके अलावा अगर ब्यूटी के हवाले से मैं बात करूँ तो जिला गिजर के अंदर बहुत सारी जगह है जो अभी डिस्कवर नहीं हुई है सही तरीके से।
असल में ऐसा तो हर जगह है, लेकिन हाँ नहीं ठीक है, उन्होंने तो आपको फौरन बड़ी फराखदिली से दावत दी है। और गिजर जो है उसके अगर आप हमारे सब प्रोग्राम सुनते हैं, मेरी कहानी में कई दफा मैं वहाँ की कहानियां करती हूँ जिसे मुझे अंदाजा होता है कि वहाँ गुर्बत बेइंतहा है। तो आप अयूब अगर आप उन लोगों से मिलें जिन्होंने खुदकुशी जिनके खानदानों में ऐसा हुआ और आप उनकी कोई कहानी लिख के भेजना चाहें तो मैं ज़रूर अपने प्रोग्राम में नशर करूंगी। इसी तरह हम हाईलाइट कर सकते हैं ना इन चीज़ों को, इसमें आप सबको हिस्सा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और आप इनकी सोसाइटी से रब्ता कीजिएगा, मुझे यकीन है ये ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर कुछ ना कुछ। अच्छा अरूबा आप लोगों में मतलब एक ये लड़ाई झगड़ा इन मानों में नहीं कि जो सचमुच का लड़ाई झगड़ा, एक लड़ाई झगड़ा होता है जो 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 अच्छा होता है, मतलब जब हम बहस करते हैं और हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ निकालना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कहानी लिखना एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसमें कई लोगों का शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो डायलॉग बोल रहा है जो आपके ये उसामा हैं या खदीजा हैं या आपके डायरेक्टर हैं, तो जब आप कहानी लिख रही थी तो किस हद तक इन लोगों ने हिस्सा लिया इस तमाम डिस्कशन में?
अच्छा अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो जहां तक आपने लड़ाई की बात की है मैं आपको बता नहीं सकती हम लोगों ने कितने घंटे गुजारे हैं हर चीज को बहस करने में, और वो उसका की बहस नहीं थी कि प्रॉपर लड़ाई हो रही है, लेकिन हर चीज को प्रॉपरली सोचने के लिए,
अच्छी वाली बहस
में जाने के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। हम घंटों जो है एक ही कमरे में बंद रहते थे और बस बाहर नहीं निकलना होता था जब तक सीन जो है वो पूरा नहीं हो जाता था, उसको सही तरह हम लिख नहीं लेते थे, एक सीन को बार बार पढ़ा जाता था उनका ताकि देखा जाए कि उसका तलफ्फुज़ वगैरह सब कुछ जो है वो सही हो रहा है। तो उसामा लाली जो है वो स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छे इम्प्रोवाइजेशन में, और खतीजा भी जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसमें कोशिश की है। लेकिन मैं आपको दो लोग जो है वो यहाँ पे हैं जिनका अभी तक नाम नहीं लिया गया, नेहा नूर और शाहान शाहिद। इन दोनों ने जितनी कोशिश की है, जितनी मदद की है सारे किरदारों को बनाने के लिए, लिखने के लिए, शान शायद और नेहा नूर ने भी काफी ज्यादा सीन्स लिखे हैं और बहुत मदद की है हम लोगों की। वो थोड़ा सा लेट आए थे हमारी पूरी प्रोसेस के लिए और टीम के लिए, लेकिन दे आर वेरी वाइटल पार्ट। तो ये बहस ऐसे चलती रही है और साथ साथ काफी कुछ इम्प्रोवाइज भी होता ही है। तो काफी ऐसे डायलॉग हैं जो कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं थे, लेकिन फिर हम बाद में जो है वो खुद ही हंसी मजाक के अंदर जो है वो अंदर किसी तरह आ जाते थे या कुछ। तो ये पूरी प्रोसेस थी जो कहते हैं इसी तरह चली है।
अच्छा तो उसामा इतनी आपकी तारीफ हो रही है, चलिए क्यों ना ये मैं तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैंने इनसे शम्स से कहा कि कुछ और बताइए, कहने नहीं नहीं हम अपना कोई राज अफशा नहीं करेंगे जब तक फिल्म जो है तो आप इनका राज अफशा कीजिए, कोई डायलॉग सुनाइए हमें अच्छा सा फिल्म का, मेबिल और मैं।
फिल्म का कोई
हाँ याद है कोई
ये मुसीबत ये एक सेकंड में जरा सुन लेते
हैं जी, याद करने की कोशिश कर रहे हैं
अगर किरदार इस तरह अकल की बजाय जज्बात का सहारा लेने से वो खोखले ही कहलाएंगे ना, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है।
दोबारा से क्योंकि हंसी में
क्या कह रहे हैं,
दोबारा से कहें कि खो गया हंसी में कहीं डायलॉग सुनाइए दोबारा से उसामा।
ये डायलॉग था जी कि अगर किरदार अपनी अकल के बजाय इस तरह जज्बात का सहारा लेंगे
तो फिर वो खोखले ही कहलाएंगे ना।
हाँ बहुत खूबसूरत। तो ये किसका, अरूबा का लिखा हुआ डायलॉग है या नेहा या शान का?
ये जी एक कलेक्टिव एंडेवर था इनका, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कौन सा डायलॉग किसका, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इनका जो राइटिंग प्रोसेस था इसका मैं हिस्सा नहीं था। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो अभी हम फिल्म लिख रहे हैं उसमें मैं राइटिंग बोर्ड पे हूँ, तो उसमें होता यही है कि सब इकट्ठे ही बैठ के लिख रहे होते हैं।
अच्छा,
आप जरूर ही बता सकते हैं उनमें से किसने ये लिखा है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं नेहा को भी लेने की, गुल बल्कि शायद उनका फोन मिला है, क्योंकि जरूरी है कि अब नाम ले लिया अरूबा ने तो उनको हम ले लें। अच्छा ये मैं आपसे पूछूंगी अरूबा और उसामा दोनों से जो कि लॉ पढ़ रहे हैं, बल्कि तीसरे भी, तीसरे कौन है लॉ के आपके साथ?
खदीजा लॉ में।
अच्छा लेकिन खदीजा तो है नहीं।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो किस हद तक, अब जैसे कि बात हुई, मैं सिर्फ, देखिए आप लोग नौजवान हैं और मुल्क जो बनेगा ना आप ही लोगों से बनेगा। मुझे तो जब भी कोई मायूस कुन बातें होती हैं तो मैं जब आप जैसे लोगों से बात करती हूँ तो मुझे एक दिल में उम्मीद सी होती है कि जब आप लोगों के हाथों में ये मुल्क आएगा तो आप इसमें बहुत से वो काम कर सकेंगे जो अभी नहीं हुए या आपके दिल में एक ख्वाब होंगे जो आप पूरे करना चाहेंगे। तो कानूनी मदद जो है ना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, और मैं यहाँ वेस्ट में देखती हूँ कि यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत काम करते हैं, अदालतों में जाते हैं और प्रोबोनो के तौर पर हेल्प करते हैं लोगों की। तो आपके यहाँ कोई ऐसा सिलसिला है नौजवानों के लिए कि जिन लोगों को कानून का लिफ्ट बे भी नहीं पता, बेचारे आम आदमी को, उसके आप कुछ मदद करें, बाहर निकलें, अदालतों में जाएं?
जी जी बिल्कुल होता है, यहाँ पर प्रोबोनो वर्क तो डेफिनेटली होता है। दरअसल अभी हम लोग तो लॉ स्कूल के अंदर ही हैं, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि बाहर जाके असली दुनिया में जो आपको किस तरह कोर्स के अंदर प्रेजेंट करना होगा, किस तरह लोगों की मदद करनी होगी। और जैसे ग्रेजुएशन के बाद जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि आप बाहर जाके या किसी फर्म के अंदर काम करना शुरू कर दें, किसी और वकील के साथ जो है काम करना शुरू कर दें और साथ साथ प्रोबोनो काम भी करें। अब शुरू शुरू में तो इतने पैसे भी नहीं मिलते, आपको पता होगा वकीलों का क्या हाल है इस मुल्क में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में जब आप इस्टेब्लिश कर लो अपने आप को तो डेफिनेटली प्रोबोनो वर्क एक ऐसी चीज़ है जो नम्स काफ़ी इंकरेज भी करता है कि आगे जा के स्टूडेंट्स जो है वो करें।
अच्छा आपके ऐसे इरादे नहीं है, मतलब ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है अरूबा, कि आपके ऐसे इरादे क्यों नहीं इस तरह का कोई काम?
आप तो ये समझती हैं कि मैंने रेडियो के ऊपर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया अपने इरादे, इसका मतलब ये कि है नहीं। नहीं लेकिन अभी
मैं तो बल्कि आपने अभी बात की कि जो वकीलों की सूरत हाल है, बाकी चीज़ों को छोड़ के इस वक्त जिस तरह उन्हें टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक दहशत गर्दी तो जितनी अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन उसमें जब ये इस तरह के वाकयात होते हैं ना कि आप किसी फ़िरके को, किसी प्रोफेशन को या स्कूल के बच्चों को इतनी दरिंदगी से जब मारते हैं तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि, मगर मैं फिर आपसे पूछ सकती हूँ क्या फिर جیسے بہت سے خاندان ہیں, میں بھی بلوچستان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں جو سارے سینئر وکیل ہیں ختم ہو گئے, پورا ایک اوپر کی پورے وکیلوں کی جو ہے پاپولیشن ختم ہو گئی وہاں پہ. تو کبھی اب آپ پہ یہ میں ذمہ داری تو نہیں ڈالتی, آپ سب چھوٹے ہیں اور آپ کی اپنی پڑھائی کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن اگر کسی ایسے سنجیدہ چیز پہ آپ کوئی ڈاکومنٹ کریں نا, اس کو اس طرح کی کوئی چیز بنائیں, تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ آپ کا تو پروفیشن بھی, آپ زیادہ دل سے اس پہ کام کر سکیں گی ایسی کسی چیز پر.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو بھی واقعے ڈسکس کیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر اور بات کی جائے اس ملک کے اندر. ابھی جس طرح کی صورت حال جا رہی ہے لگتا ہے کوئی بھی جو ہے بالکل محفوظ نہیں ہے اس ملک کے اندر, اور لائرس کے ساتھ اسپیشلی جو بامبنگز ہو رہی ہیں, جو اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کے بعد سے تو اور بھی اس پروفیشن کی پوری برا نام بن گیا. تو جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میڈیا جو ہے وہ بہت ضروری کردار کا فرما کرتا ہے کہ زیادہ جو ہے اویئرنیس آئے اس طرح کے ایشوز کے بارے میں. سیریس ٹاپکس کی جہاں تک بات ہے, ہم لوگوں نے پہلے کافی سیریس ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے, خطرہ فلک جو ہے وہ ایک سیریس فلم تھی, لیکن اس پر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا ایک کامیڈی ٹچ آ جائے, تھوڑا سا ایک لائٹ ٹچ آ جائے, لوگ تھوڑا سا ہنس سکیں. کیونکہ جنرلی فلمیں آتی ہیں پاکستان سے ان کے اندر وہ اتنے لائٹ موضوعوں پر ہوتی نہیں ہے, لیکن آپ بالکل میرے خیال میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایک ڈاکیومنٹری بنائیں اس کے اوپر.
ہاں ڈاکیومنٹ, کیونکہ اس میں بالکل کئی دفعہ نا جب آپ فلم بناتے ہیں نا تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ کھو جاتی ہے اس کے اندر سے نا, جو آپ کہنا چاہتے ہیں. ایک جھلک آپ کے ایک اور پروڈکشن سے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلیں گے. ہمارے ساتھ شان آ گئے, ان سے بات کریں گے.
ماں کہتی تھی زندگی رنگوں کا مجموعہ ہے, ہم رنگوں کے جھمگٹے سے کچھ رنگ نکالتے ہیں اور سب رنگ ایک سے نہیں ہوتے, کچھ رنگ خوشی کا سبب ہوتے ہیں, کچھ رنگ اداسی کے.
تو ہمارے ساتھ شاہان بھی ہیں, شاہان شاہد جو کہ اس کہانی کے لکھنے میں شامل تھے, اور ساتھ ہی مرید خان بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. مرید خان جلدی سے اپنا سوال پوچھ لیجیے بہت چند سیکنڈ میں. جی بولیے.
السلام علیکم جناب, میں آپ کو اور مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی چائلڈ لیبر پر یہ جو بچے جو ہے یہ بٹھوں پہ کام کرتے ہیں, یہ جو سنٹر لگاتے ہیں, یہ جو ورک شاپوں میں کام کرتے ہیں, ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, اور ان پر بھی کوئی فلم بنائے, اور ایک ہم جو گندگی بہت پھیلاتے ہیں پاکستانی, اس پر بھی کوئی فلم بنائے.
اچھا چلیے آپ کی یہ فرمائش ان تک پہنچ گئی, اور ہم کچھ بات کرتے ہیں شاہان شاہ سے. شاہان السلام علیکم. شاہان آپ کی آواز بہت کم آ رہی, تھوڑا اونچا.
بغیر آپ کو سوال کریں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ہمیں چار پانچ لگے فلم بنانے میں, اور اس دوران جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ فلم بنانا ایک انتہائی مشکل کام ہے, اور اس میں آپ کا ہر ہیومن اسکل جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ لکھتے کیسے ہیں, آپ چیزوں کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں, آپ سینیماٹوگرافی کیسے کرتے ہیں, تو تمام ہیومن اسکلز میرے خیال میں اس فلم بنانے میں ٹیسٹ ہوتی ہیں. تو وہ ایک ٹیلنٹ تھا, تو وہ میرے خیال میں اس نے بہت کچھ سکھایا ہم سب لوگوں کو جس کے لیے فلم کرتا تھا.
بالکل, اس بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے خیال آیا کہ ایک پروگرام ختم کرنا ہے, تو میں آپ سب سے پوچھوں باری باری. سب سے پہلے ایمن رضوان سے کہ آپ کا سبجیکٹ تو کمپیوٹر ہے, تو مختصراً بالکل, کیونکہ ہم سب سے پوچھیں گے بات کہ کس طرح اپنی آئندہ زندگی میں آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ چلائیں گے, فلم بنانے کے اپنے شوق کو اور کمپیوٹرز کو.
میرے جو فلم بنانے کا شوق ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا کافی انٹرسٹ ان جنرل آرٹس اور میوزک میں بھی خاص طور پہ میں رکھتا ہوں انٹرسٹ, تو آرٹ اور ڈیزائن وغیرہ میں. تو میرا آگے ارادہ ہے کہ میں آگے کوئی ایسی انشاءاللہ ماسٹرز میں کوئی ڈگری کروں جس میں آرٹس اور
टेक्नोलॉजी को लेके किसी तरह आर्ट की प्रिजर्वेशन या इस तरह की चीजों पे मैं काम करूँ।
अच्छा, आप खुश किस्मत है कि आपने जवाब दे दिया, क्योंकि नेहा आ गई है और अब बाकी लोगों को सवाल पूछने का मौका नहीं है। जी नेहा, आपकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, ये अरूबा और ये सब लोग आपकी दोनों की बहुत तारीफ कर रहे थे शाहान की, तो कुछ हमें बताइए अपने इस तजर्बे के बारे में मुख्तसरन, क्योंकि सिर्फ दो मिनट है बल्कि डेढ़ मिनट। जी नेहा जी, कुछ बताइए अपना जो आपका तजर्बा था कहानी।
आवाज नहीं आई।
अच्छा, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ सही है, बोलिए बोलिए।
जी जी अब आ रही है।
अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं चलिए हम उठा रखते हैं आइंदा किसी वक्त पर इस सारी चीज को, कि किसी दोबारा आपको बुलाएं। आपको भी थोड़ा सा तो पता लग गया होगा कि हमारे यहाँ टेलीफोनों का जो एक मसला होता है, तो टेलीफोन अच्छे से अच्छे लेकर आइए आप लोग, अपनी जितनी सलाहियतें अच्छे टेलीफोन के लिए इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हम आपको सुन सकें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी ऐमान रिजवान, शम्स पाशा, उसामा लाली और अरूबा सत्तार का, इसके अलावा नेहा और शाहान का भी हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। अपने जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं आप ईमेल करते रहिए हमें, कभी ना कभी कोई अच्छा सा प्रोग्राम होगा तो हम बहुत जल्द आपके साथ दोबारा भी करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।
शुक्रिया।
और खुदा हाफिज आप सबको। हमारे इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर गुल थी और शनाजीजा।
नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करती।
आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है,
फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।